ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 25। भेजिरे मुनयः अथ अग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनु तान् इह भेजिरे मुनयोत्थाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नु तानिह भेजिरे मुनयोत्थाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नु तानिह भेजिरे मुनयोत्थाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय जिरे की सेवा। मुनयः मुनियों ने अथ इस प्रकार अग्रे पूर्व काल में भगवन्तं भगवान के प्रति अधोक्षजम् अध्यात्मा गुणातीत सत्वं अस्तित्व विशुद्धं प्रकृति के तीनों गुणों से परे क्षेमाय परम लाभ प्राप्त करने के लिए kalpante yogya hai ye jo anu anusaran karte hai tan ve iha is sansar mein purv kal me samast maha muni ong ne bhagavan ki seva ki kyunki ve prakriti ke tinon gunon se pare hai उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की भगवान की पूजा। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करते हैं वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाते हैं। तात्पर्य धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहां भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होते हैं तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करे और उससे परम लाभ प्राप्त करे। भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंत मधोक्षजम सत्वं विशुद्धं शेमाया कल्पन्ते ये नुतानिह। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशम् प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया श्रीगुरुन्तं नतोऽस्मि। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivashakan Vitamscha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ek Adhunik Mathe ki Srimad Bhagavat Adhunik ki kahi 100 सालों के पहले कुछ लोग या शायद एक व्यक्ति जिनका नाम बोपदेव था या अलग अलग पंडितों मिलके ये श्रीमद् भागवत की सृष्टि की। तो श्रीमद् भागवत की कथा से हम समझते कि श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न है और भगवान जैसे सनातन ही है। परंतु यदि हम वो ही मत स्वीकार करेंगे तो फिर भी यही पर इसी श्लोक में श्रीमद् भागवत का कथन है कि उपदेश जो है श्रीमद् भागवत में वो नूतन नहीं है, अभिनव नहीं है। भेजी रे मुने ये था ग्रे बहुत पहले भी मुनियों भगवान की सेवा की, तो श्रीमद् भागवत में मुख्य उपदेश है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम पुरुष भगवान है और जीव का प्रयोजन उनकी सेवा करना। तो ये कोई अभिनव उपदेश नहीं है, बहुत पहले से भी सब मुनि वैसे की। और यदि ये सब नया था तो उसका अर्थ क्या ही क्या था? यदि हम स्वीकार करते हैं कि ये सब आधुनिक है, अभिनव है, कि पूरी श्रीमद् भागवत की वाणी तो पूरा झूठी होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का उपदेश है कि भगवान सनातन है। तो यदि कहीं सालों के पहले कुछ लोग उनके मन से ये श्रीमद् भागवत का उपदेश कल्पना किया तो ये सब मिथ्या हो जाती। तो जो वास्तविक धर्मावलंबी है वो श्रीमद् भागवत में और सब वैदिक शास्त्रों में सब कुछ स्वीकार करते हैं। ये प्रागाधुनिक नहीं है, सनातन ही है। एक और संस्कृत शब्द है प्राग ऐतिहासिक, ये शब्द संस्कृत शब्द है परंतु आधुनिक शब्द है। प्राग ऐतिहासिक ये एक अंग्रेजी शब्द का अपरूप है। अंग्रेजी में एक शब्द है प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक मतलब इतिहास के पहले ऐसा कुछ था। तो इतिहास शब्द का क्या अर्थ है? दो इतिहास है नहीं, वैदिक साहित्य में महाभारत है और रामायण है, और पुराण शास्त्र में बहुत इतिहास संकलित होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत का षष्ठ स्कंद के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि अभी मैं एक बहुत प्राचीन इतिहास कहता हूँ अजामिल का इतिहास, वो शब्द आते हैं। परंतु पाश्चात्य जगत में कि पुराण शास्त्र, पुराण का मतलब बहुत पहले वो सब जो हुआ था उसका वर्णन, पाश्चात्य में और आधुनिक युग में भारत में भी अधिकांश व्यक्ति डार्विन का वाद स्वीकार करते कि बहुत पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, महान शून्य था। शून्य तो महान नहीं हो सकते और छोटा भी नहीं सकते। यदि महान है या छोटा है उसका परिमाण होता है, लेकिन वो तो नहीं, शून्य एकदम था। और शून्य से एक विराट विस्फोट हो गया और बहुत लंबा इतिहास है। तो धीरे धीरे सब नक्षत्र, तारा, लोक ऐसे कोई नियंत्रण नहीं था, कोई डिजाइन नहीं था, तो वैसे अगर है और कुछ छोटी छोटी मछली हुई और फिर कुछ मछली तो भूमि के ऊपर आ गया, फिर कुछ बंदर था, उसके बाद चार्ल्स डार्विन आया था, नहीं नहीं उसके पहले कुछ आदिवासी जैसे लोग था, आदिवासी शब्द है नहीं भारत, आदिवासी का मतलब सबसे नीच जाति, परंतु आप सब आदिवासी है क्या? वो अपराध करता हूं, आप सब आदिवासी है नहीं, मतलब आपके पूर्व पुरुष भारत भारत में थे, बाहर से नहीं आया, ये एक मिथ्या संदेश है कि वो पहले भारत में सब आदिवासी थे और फिर बाहर से कुछ लोग आए हैं, ये सब ब्रिटिश लोग, ये सब मेरे पूर्व पुरुष, ये सब काल्पनिक इतिहास सृष्टि की, और ऐसे उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग में भेद की सृष्टि करने के लिए ऐसे ये काल्पनिक इतिहास सृष्टि की। तो प्री हिस्टोरिक, प्राग आधुनिक, प्राग ऐतिहासिक, इसका मतलब है कि 2-3 हजार सालों के पहले कुछ सभ्यता नहीं था, कुछ सभ्यता नहीं था, था या थी, सभ्यता नहीं था नहीं थी। वो सभ्यता का आरंभ यूरोप में था, ग्रीक लोग, जो महाभारत में ग्रीक को लोग को यवन बोलते, और कौन है पुरु अभी याद नहीं है मुझे, कि कुछ लोग वो भारत से सभ्यता का स्थान से बहिष्कृत हुए और वे यवन का देश गए थे और सब यवन था, और बाद में वापस आया और भारत को आक्रमण किया वैसे। तो वहां पर संस्कृति सभ्यता का आरंभ था और धीरे धीरे ब्रिटिश लोग हुए, और मतलब इस गलत धारणा से प्रचार करना चाहते हैं कि वास्तविक सभ्यता यूरोप में है और विदेश के लोग यहाँ भारत आए हैं ये सब जंगली लोग को सभ्यता प्रदान करने के लिए। नहीं नहीं ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। तो ये शब्द प्राग ऐतिहासिक, इसका मतलब है यदि कुछ मानव जातीय लोग थे 3,000, 4,000, 5,000 सालों के पहले, वो सब जंगली जैसे थे, और इसलिए कुछ उनके बारे में कुछ इतिहास नहीं है। जंगली लोग का क्या इतिहास है? इतिहास का मतलब सभ्यता का इतिहास। तो एक राजा था और दूसरा राजा का राज्य को आक्रमण किया है, यही इतिहास है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन था ब्रिटिश को निकालने के लिए, हटाने के लिए, और उसमें महात्मा गांधी मुख्य थे, और यही सब इतिहास है। तो शास्त्र में इतिहास तो केवल 3,000 सालों के पहले से नहीं है, सृष्टि से और सृष्टि के पहले भी। प्राग ऐतिहासिक यही शब्द प्रयोग है, कैसे? सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि के पहले भगवान महाविष्णु कर्णदक्षाय विष्णु, कर्णदक्षाय विष्णु थे, और उसी समय चंद्रलोक सूर्यलोक भूमि कुछ नहीं था। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का इतिहास और सब पुराण शास्त्र में इतिहास, ये सब पाश्चात्य देश के ऐतिहासिक भारत को बहुत प्रकार से निंदा करते हैं, और एक प्रकार है कि हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इतिहास इतिहास तो नहीं है, इतिहास को विशेष महत्व नहीं देते, परंतु इतिहास जो है शास्त्र में वो इतिहास है परम ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए। पूरा जगत के इतिहास, भौतिक जगत का इहा, ये शब्द आते हैं यही श्लोक में, इहा इहा। यदि हम किसी श्लोक में इहा शब्द देखते हैं, उसका मतलब है यहा यहा कहा संसार में। तो भौतिक जगत का इतिहास जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख वो ही है भगवद गीता। महाभारत में इतिहास की बहुत चर्चा होते हैं, परंतु भगवद गीता में केवल यही है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहु मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। तो वो ही है कि बहुत पहले भगवान कृष्ण कहते मैं सूर्यदेव को यही वाणी बताई, और सूर्यदेव मनु के मनु इक्ष्वाकु के, और इस प्रकार यही वाणी परंपरा में से आ गए है। तो वो वास्तव में इतिहास प्रदर्शन करने के लिए नहीं, तो यही तथ्य कि ये ज्ञान जो मैं कहता हूँ कृष्ण भगवान कहते हैं, तो ये कुछ नवीन नहीं है, वो बहुत प्राचीन है, और पहले यही ज्ञान मानव समाज में परंपरा में से आता था, अभी वो परंपरा तो लुप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, इसलिए मैं तुमको अर्जुन को फिर कहता हूँ। तो शास्त्र में इतिहास बहुत है, श्रीमद् भागवत में भी, परंतु वो सब कहानियों का उद्देश्य है हम जो भौतिक जागरण निवासियों है हमको ज्ञान प्रदान करना कि भौतिक जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय है, और सब प्रयत्न जो हम करते भौतिक जगत में सुखी होने के लिए उसका अंत होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय, और हमको गोलोक जगत वहां जाना का उपदेश देते हैं। गोलोक धाम में इतिहास क्या है? इतिहास नहीं है क्योंकि सब कुछ सनातन है, वहां पर प्रस्थस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। भौतिक जगत की सृष्टि होते और प्रलय होते बार बार, परंतु गोलोक जगत में सनातन जगत वैकुंठ में ऐसे नहीं होते, वहां पर kyahote kataganam natyam gamanam apivangshi priyasaki. Wahan par chalna, paidal se chalna, wo kya hai? Nachna. Aur baat bolna nahi hote, sab log itna prasan rehte sadaiva ki kali gaate hain. Isle Bhagavan ki vani Arjun ko usko Bhagavad Gita bolte. Kyunki Bhagavan ka kanth dhvani itna madhur hai ki usko Gita bolte. Wo sadharan shabd nahi hai. Bahut madhur hai. Katha ganam natyam gamanam api vangshi priyasak. Aur waha par sab Golokdham mein sab prem priti milte hai Shri Krishna ki vangshi ki dhwani sune se. To waha par Golokdham mein vatavaran aur iha yahi jagat mein o vatavaran dono mein bahut bada antar hai. Isliye muniyo, munijan, Srimad Bhagavat se, aur Bhagavat janon se, Bhagavat upadesh milke, prayatna karte, kisi prakar prayatna, Bhagavan ki seva karna, jisse ve adhika prapt karenge, Bhagavan ka dham pravesh karne ke liye, Bhagavan ka dham mein pravesh karne ke liye. To Bhagavad shabd ke do mukhya arth hai. Bhagavad shabd ka arth hai jo Bhagavan se sambandhit hai. Aur do mukhya hai. Ek Bhagavata baro, Bhagavata shastra, aur Bhagavat bhakta, bhakti rasa patra. Do prakar ke Bhagavat hai. Bara Bhagavat hai, Srimad Bhagavatam. Jo Bhagavan se abhinna hai. Aur ek prakar ke Bhagavat hai, bhakt. Visheshkar usi prakar bhakt, jo bhakti rasa patra hai. Jo bhakti ras sadaiva anubhav karte. Wo bhakti ras anubhav karna koi laghu vishay nahi hai. Samanyata Hindi bhasha mein agar koi kisi bhakt hai usko bhagat bolte hai, bhagat. Bhagat ka matlab kya hai? Bhagavat. Parantu Bhagavad shabd ka arth hai jo puri tarah shuddh bhakt hai, jo adhokshad star par, jaise Bhagavan adhokshad star par hai, to Bhagavan ke bhakton usi star par hai. Etadishanamishasya prakriti sthopi tadgunai na yujyate sadatma stayata buddhis tadashraya. Adhokshaj shabd ka arth hai ki Bhagavan teen gunon se atit hai. Hamari sadharan drishti se atit hai. To Bhagavan adhokshaj hai kaise? Etad ishanamisha se. Kaise hum Krishna ko Bhagavan Ishvara, kaise hum Krishna ko bolte Ishvara? तो इस प्रकार भगवान कृष्ण परमेश्वर है कि वे भौतिक संसार में अवतरित होते हुए भी ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे रहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों भी इनकी कृपा से भौतिक जगत में उपस्थित होते हुए भी भौतिक कलुषों का प्रभाव से सदैव मुक्त बोलते यह यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्याप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते यह यस्य यह वो शब्द फिर आए हैं नहीं यह यह यही जगत में यह यस्य हरे भक्ति कर्मणा मनसा गिरा अर्थात यही संसार में उपस्थित होते हुए भी वो भक्त जो कर्म से मन से और वचनों से सभी अवस्थों में श्री कृष्ण की सेवा में हरि की सेवा में तन्मय रहते वो ही व्यक्ति जीवन मुक्त बोलते जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? भौतिक जीवन बंधन का प्रतीक है, बंधन का बंधन कैसे होते, बंधन का अर्थ क्या है? भौतिक संसार में रहना। परंतु शास्त्र में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति भौतिक जगत में उपस्थित होते हैं परंतु सदैव पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तन्मय रहते वो जीवन मुक्त है। यही संसार में उपस्थित होते हुए भी मुक्त पुरुष है, भगवान जैसे। भगवान भौतिक संसार में आते हैं परंतु कभी भी भौतिक कलुषों का प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज का अर्थ है कि हम साधारण दृष्टि शक्ति से साधारण श्रवण शक्ति से साधारण बुद्धि से साधारण ज्ञान अर्जन करने से भगवान का साक्षात्कार नहीं मिल सकता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदा। भौतिक इंद्रियों और भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है। तो कैसे संभव है? संभव है इनकी कृपा से। और इनकी कृपा कैसे मिल जाती? सेवन्मुख होने से। सेवन्मुख का अर्थ है कि सदैव उत्साही होना भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। और वो सेवा कैसे करने है? जीवादो, इसका मतलब है जीव। जीव से कृष्ण कथा कृष्ण नाम उच्चारण करना और हरि प्रसाद के अलावा और किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना। तो ये हरि सेवा का आरंभ है। और हरि सेवा बहुत प्रकार होते हैं परंतु सेवन्मुखे ही जीवादो यही शब्द से हम समझ सकते हैं कि हरि सेवा करना विशेष कठिन नहीं है। हरि सेवा से हम अधिका लाभ कर सकते हैं भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए। तो कैसे हम अधिकार मिल सकते हैं हरि सेवा करने के लिए? मनुष्य मात्र जीव मात्र का अधिकार है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सब जीव कृष्ण भगवान का दास है। सब जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। तो सब का जन्म से सबके उपस्थित होने से सबका अधिकार है, फिर भी भक्ति अधिकार हम मिलते हैं श्रद्धा से। सबका अधिकार है परंतु सब लोग कृष्ण भक्ति को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि श्रद्धावान जन भक्ति अधिकारी, श्रद्धावान जन हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार है, श्रद्धावान होने चाहिए। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा होने चाहिए भगवान में और भागवत में। भागवत में अर्थात श्रीमद् भागवत में और भक्तों में। तो सबसे बड़ा भागवत है श्रीमद् भागवत, क्योंकि वो वाणी जो श्रीमद् भागवत में, वो भगवान की वाणी है, और वो वाणी है जिससे हम भगवान को मिल सकते। परंतु वो वाणी भगवत भक्तों से प्राप्त होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे बड़ा भागवत है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि श्रीमद् भागवत मुख्य प्रमाण है। कोई एक व्यक्ति भागवत हो सकते यदि श्रीमद् भागवत की वाणी के अलावा और कोई दूसरा वाणी नहीं बोलते। यदि किसी व्यक्ति बहुत बड़ा भागवत जैसे अभिनय करते परंतु श्रीमद् भागवत की वाणी यथारूप नहीं कहते, तो वो वास्तविक भागवत नहीं है। परंतु हमारी दृष्टि से, हमारे दृष्टिकोण से सबसे बड़ा भागवत है पुरुष भागवत, क्योंकि श्रीमद् भागवत के गहरा रहस्यों में प्रवेश करने के लिए हमें भागवत जानों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, नहीं तो संभव नहीं है। आज तक हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता का पाठ करते हैं, परंतु भगवत गीता का वास्तविक संदेश, यथारूप संदेश तो नहीं जानते। ऐसे बहुत पंडित, योगी, स्वामी, गुरु जो भगवत गीता से उपदेश देते हैं परंतु स्वयं वो उपदेश नहीं समझे। और भगवत गीता वो बहुत गहरा होते हुए भी तो वो श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रवेश ज्ञान है। तो ये श्रीमद् भागवत में वो सब ज्ञान जो है बहुत ही गहरा है, रहस्यमय है। वो सभी ज्ञान में प्रवेश करने के लिए हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए भागवत जानों से। श्रीमद् भागवत में मुख्य द्वादश महाजनों, द्वादश भागवतों का नाम संकलित है, स्वयंभूर, नारद, शंभू, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलि, व्यास, कीर, वायम। तो इस प्रकार द्वादश महाजन है। वायम का मतलब यमराज और सब है, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार का मतलब सनत कुमार और चार कुमार, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल जो स्वयं भगवान ही है और भगवत के रूप में अपनी माता देवहूति को संख्य योग, भक्ति योग दर्शन प्रदान किया है। कपिलो मनु, मनु इस प्रसंग में मानो शब्द का अर्थ है स्वयंभुव मानो प्रहलाद जनक जानकी सीता देवी के पिता श्री जनक प्रहलाद जनक भीष्म बलि वायासकी वायासकी शब्द का अर्थ है शुक शुकदेव और व्याम यमराज। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वादश प्रसिद्ध महाजन है। महाजन केवल द्वादश नहीं है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए हम कहते, सभी वैष्णव महाजन है। महात्मा महात्मास्तु महात्मानस तुमांग पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिनव्ययम्। महात्मा कौन है, महात्मा कौन है? यदि हम पाश्चात्य देशों में महात्मा कहेंगे सब हमको बताएंगे हाँ महात्मा महात्मा गांधी, महात्मा का मतलब महात्मा गांधी। परंतु भगवद गीता के अनुसार महात्मा कौन है? महात्मानस तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित, मेरी दैवी प्रकृति से आश्रित जो है वही महात्मा है। जैसे वो ही श्लोक है एताधीशनामीशस्य प्रकृतिस्थोपितद्गुणाय प्रकृतिस्थोपितद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथाभूतिस्तदाश्रयः तदाश्रयः। तो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में दर्शन जो है तत्व ज्ञान जो है, दर्शन है जो तत्व ज्ञान जो है, तो दोनों का पूरा समन्वय है, कुछ भेद नहीं है दोनों में। तो महात्मा जन के क्या क्या लक्षण है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः भजन्त्य मन्य मनसो और अनन्य मनस से, अर्थात पूरा ध्यान से महामानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। वो जानते हैं कि मैं कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद हूँ, और इसलिए अनन्य मनस से महात्मा जन मुझे भजन करते, भजन्ति अनन्य, क्योंकि वे जानते कृष्ण का क्या पद है। और यहाँ पर एक ही वचन है बेजी रे मुनयो था ग्रे भगवंत मधोक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षेमाया कल्पन्ते येनु तानेह। तो बहुत पहले भी सब मुनिजन बहुत आनंद से कृष्ण की सेवा कृष्ण का भजन किया है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? तो हम सब मुनि होने चाहिए। मुनि शब्द का अर्थ नहीं है जो रास्ते रास्ते में एक दो पैसा मंगते हो लंबी डाड़ी वाले, ऐसा नहीं है। आजकल एक दो पैसा नहीं है और 10 रुपया के कम ग्रहण नहीं करते। तो वो मतलब नहीं, मुनि का मतलब जो जीवन के चरम उद्देश्य के बारे में सोचते रहते। मनीषी एक और शब्द है श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में भी है मनीषी। मनीषी का मतलब जो फलतू लघु प्रयत्नों में व्यस्त नहीं रहते, जो जानते हैं कि भगवान सनातन है, मैं सनातन हूँ और मेरा सनातन संबंध भगवान कृष्ण के साथ ही है। तो उसी प्रकार महात्मा मुनि मनीषी भक्त भगवत का वर्णन होते श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का संदेश है कि सभी व्यक्ति मुनि होने चाहिए। सभी व्यक्ति का मूल अधिका कृष्ण सेवा करने का अधिका सभी व्यक्ति का वही वही करना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा। और किस प्रकार सेवा अहेतुकी या प्रतिहत ये सब विचार बहुत दीर्घ है, इसलिए केवल एक सत्र में ये सब सभी तत्व ज्ञान कहना नहीं है। नित्यं भागवत सेवा प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा होनी चाहिए और इस प्रकार हम धीरे धीरे मुनि महात्मा जन के पथ पर जो भगवान के ओर जाते हैं वो ही पथ पर हम धीरे धीरे अग्रसर हो सकते। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न हो पूछे। प्रश्न नहीं, एक प्रश्न है।
आपने जीवन गुप्त और महात्मा के विषय में बताया।
महात्मा ही जीवन मुक्त।
प्रभुपाद जी के जीवन में और अन्य आचार्यों के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि अपने वृद्ध अवस्था में
ऐसे जीवन मुक्त नहीं थे। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद का गृहस्थ जीवन में और बहुत भक्तों का जीवन में हम देखते हैं तो कैसे बहुत तकलीफ में जीवन बीतता। तो इसलिए ये अधोक्षज शब्द है नहीं, हाँ भगवंतम अधोक्षजम। साधारण बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे और भगवान के भक्तों भी वैसे हैं। प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर आधुनिक है, मतलब उनकी यही संसार में इनकी लीला आधुनिक। प्रहलाद महाराज उनका जीवन में क्या खाली भगवान का भजन ऐसे था? नहीं, वास्तव में तो ये सब प्रख्यान जो भागवत में भक्तों के बारे में तो सब में एक मुख्य लक्षण है। तो कैसे भक्तों बहुत कष्ट के बीच में भगवान का भजन किया ऐसा है नहीं? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज ऐसे तो है। तो साधारण बुद्धि से भक्तों का जीवन चरित्र देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि वे भगवान के प्रतिनिधियां हैं, भगवान स्वयं उनको भेज दे हमारे बीच में, हमको कृष्ण भक्ति सिखाना के लिए, सिखाना केवल मुंह से नहीं तो आपने चरित्र से भी। किस प्रकार अत्यंत कष्टों के बीच में भी निष्ठा रखना चाहिए भगवान और भगवान की सेवा में और भगवान के भक्तों में। यदि हम भक्ति विलोचन से भगवान के भक्तों का चरित्र देखेंगे हम वैसे ही देखेंगे। और यदि हम सोचते ये सब साधारण लोग है मेरे जैसे, ये शायद मेरे से थोड़ा निम्न भी है, यदि हम उस प्रकार विचार करेंगे तो हम भक्तों से वो उपहार जो हमको देना चाहते हैं हम उससे वंचित होंगे, मतलब हम प्राप्त नहीं करेंगे। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र। जे निंदे हिंसा करे भकते विनोद न संभाषे थारे मौन धरे और दूर ताकि समथिंग लाइक दैट। उसका मतलब है भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र जो लोग वैष्णवों की हिंसा करते, निंदा करते, भक्तिनो ठाकुर कहते संभाषय थे, ऐसे लोग से मैं बात नहीं करता हूँ, उनसे दूर रहता हूँ। एक और प्रश्न,
एक जिज्ञासा है मन में, ऋषियों मुनियों ने नारायण की पूजा की, भगवान की पूजा की, लेकिन ये देवी देवताओं की पूजा का चलन कैसे शुरू
हुआ? देव देवियों की पूजा के बारे में कल आए, अगला श्लोक उसके बारे में है। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पथियान पथिनाथ नारायण कला शांत भजन्ति हियानुसूयव। विशेष का घोर रूप, उग्र रूप, ऐसे देव देवियों की पूजा नहीं करने चाहिए। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है, अर्थात मुनि, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका समान। बाद में सुनिए, सबका समान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो मुमुक्षव जो मुनि देव देवियों की पूजा नहीं करते, विशेषकर उग्र रूपी जैसे काली, चामुंडी, छिन्नमष्टक, ये सब ही है। परंतु सब लोग तो मुनि नहीं है, और उनके लिए काली, चामुंडा, छिन्नमष्टक, आप मालूम है छिन्नमष्टक कौन? देवी का एक रूप है जिनका मस्तक सिर छिन्न है, वो फिर भी जीवित है। तो उसी प्रकार वो विशेषकर तामोगुणी लोग के लिए है, उस प्रकार की पूजा होती है। तो सब लोग मुनि नहीं है, जिससे उनका कल्याण हो सकते है। देवियों की पूजा विधान का वर्णन है शास्त्र में, और संस्कृति में है, वैदिक संस्कृति में है। परंतु श्रीमद् भागवत परमहंसजन के लिए है। जैसे श्रीमद् भागवत का शुरुआत में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत धर्म प्रोजित खैतव अत्रो परमो निर्मत सरानम सताम। परमहंस के लिए है श्रीमद् भागवत, और परमहंस जन केवल नारायण की पूजा करते हैं, और जो उसी स्तर पर नहीं है उनके लिए देव देवियों की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। इतिहास वो शास्त्र में इतिहास का शब्द और अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, दोनों तो वास्तव में एक ही नहीं है, क्योंकि इतिहास संस्कृत में संस्कृत शब्द इतिहास का मतलब वो सब पृथक जो पुराण शास्त्र महाभारत इत्यादि में संकलित है, वही इतिहास। और पाश्चात्य इतिहास है कि कैसे इंग्लैंड और जर्मनी लड़ाई किया, जो सब फालतू है, निरार्थ है। बहुत शब्द है जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग्य है, जिसका प्रयोग होते है, जिसका अर्थ मुख्य अर्थ से अलग है। जैसे वो ट्रेन डब्बा में देखते दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों उसका मतलब वो शब्द क्या था, विकलांग, पंगु, अभी दिव्यांग उसको बोलते हैं। दिव्य कैसे है, आदिवासी उसके बारे में बताया था ना, और कहते हुए महात्मा गांधी बोलते है वही लोग तो हरिजन है। हरिजन कौन है, आप सब हरिजन है, हरि की पूजा करते है, नारद मुनि हरिजन है, और हरिजन क्योंकि हरिजन तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसलिए महात्मा गांधी विचार के, समाज का विचार है सबसे नीच जनों को हरिजन बताए। तो इस प्रकार हरिजन जो सबसे बड़ा प्रशंसा था तो सबसे बड़ी निंदा हो गया, लेकिन वास्तव में हरिजन का शब्द है हरि के भक्तों। तो क्या है
इतिहास को हम कभी कभी कहानी के रूप में भी इसके विषय में कहानी आती है।
हाँ तो कहानी जैसे होते हैं नहीं, क्योंकि ऐसे था फिर उसके बाद ऐसा हुआ था, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये शास्त्रों में ये सब कहानियां जो है वो टीवी पर सोप वो ऐसे वो उसी प्रकार नहीं है, वो सब वास्तविक। सुखदेव गोस्वामी थे, राम थे, ऐसा नहीं है कुछ कहानी सिर्फ, राम थे, राम है, सीता थी, सीता है, ये केवल काल्पनिक कहानियां नहीं है, सब वास्तविक ही है।
कहानी जैसे हम बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये काल्पनिक है,
तो वो सब अपराध है, यदि काल्पनिक जैसे कहना है तो सब अपराध होते हैं।
इसके विषय में कहानी शब्द का उपयोग करना उचित है,
कहानी हम राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा कहानी है, कहानी का मतलब जो कहना है उसको कहानी बोलते हैं। उसमें दो कहानी बोलने से दोष नहीं है, लेकिन सामान्यतः कहानी से लोग क्या समझते हैं, कुछ हल्का विषय है मनोरंजन के लिए, ऐसा नहीं है। राम कथा कहना सबसे अच्छा है, राम की कहानी ऐसे कहना चलेगा, लेकिन राम कथा कहना सबसे अच्छा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।